أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. خداوند متعال آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھے. یہ درس جو ابھی دینے جا رہے ہیں، یہ وجود کے اصیل ہونے اور ماہیت کے اعتباری ہونے کے بارے میں ہے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ جو بھی واقعیت خارجی ہے، اس سے ہم دو مفہوم منتظر کرتے ہیں. ایک مفہوم مفہوم مشترک ہے اور ایک مفہوم مفہوم مختص ہے. اس کو گزشتہ جلسے میں ہم نے بیان کیا تھا. مفہوم مشترک وہ ہے وجود، اور مفہوم مشترک کا نام وجود ہے، مفہوم مختص کا نام ماہیت ہے. اب سوال یہ ہے کہ خارج میں ان دونوں میں سے کیا ہے، آیا وجود ہے یا ماہیت ہے؟ سارا جھگڑا اسی پہ ہے. یعنی مصداق بالذات کس کا ہے، وجود کا ہے یا ماہیت کا ہے؟ اگر ہم نے کہا کہ مصداق بالذات وجود کے لیے ہے، تو ہم اصالت وجود کے قائل ہو جائیں گے. اگر ہم نے کہا کہ مصداق بالذات ماہیت کے لیے ہے، تو ہم اصالت ماہیت کے قائل ہو جائیں گے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں قول حق یہ ہے کہ خارج میں جو چیز مصداق بالذات ہے وہ وجود ہے، اور ماہیت کو ذہن بناتا ہے، ذہن انتظار کرتا ہے. بس خارج میں وجود قلم ہے، وہ مصداق بالذات جو چیز ہے وہ وجود قلم ہے، لیکن اسی وجود سے عقل انسانی ماہیت کو بھی انتظار کرتی ہے. ہماری عقل کیسے انتظار کرتی ہے اس ماہیت کو؟ یعنی آیا ماہیت خارج میں ہے یا نہیں؟ سارا نقطہ یہی ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو واضح ہو جائے گا کہ اصیل کون ہے، ماہیت ہے یا وجود ہے. یعنی خارج میں آیا ماہیت ہے یا نہیں، ہم جواب میں کہیں گے یہ اعتبار عقلی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری عقل اسی ماہیت کو موبائل سے انتظار کر سکتی ہے؟ مثلا جو خارج میں جو انسان تھا، اس انسان سے اس عقل نے انسان کی ماہیت کو انتظار کیا، آیا اسی انسان سے قلم کی ماہیت کو انتظار کر سکتا ہے، کر سکتی ہے عقل؟ آیا اسی انسان سے گدھے گھوڑے کی ماہیت کو انتظار کر سکتی ہے عقل یا نہیں؟ خوب نہیں کر سکتی، کیونکہ بالآخر سوال یہ ہے کہ یہ جو خارج میں جو چیز موجود ہے، اس سے انتظار کرتی ہے عقل ماہیت کو، اسی سے انتظار کرتی ہے، لا غیر، کسی اور چیز سے انتظار نہیں کرتی. جو ماہیت ہماری عقل جو ہے انسان سے انتظار کرتی ہے، آیا وہی ماہیت گھوڑے سے انتظار کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اصالت وجود کی بنا پر آپ کہتے ہیں کہ خارج میں وجود ہے، تو کیوں آپ ماہیت مخصوصہ کو وجود مخصوصہ سے انتظار کرتے ہیں؟ توجہ ہے. مثلا آپ اگر کہتے ہیں कि असालत वजूद के बिना पर आप कहते हैं कि खारिज में वजूद है, तो क्यों आप माहियत मखसूसा को मौजूदात मखसूसा से इंतजार करते हैं, किसी और से क्यों नहीं इंतजार करते? जवाब यह है कि दुरुस्त है, माहियत खारिज में मिस्ताक बिज़ात नहीं रखती, खारिज में उसका कोई भी मिस्ताक नहीं है। दुरुस्त है कि माहियत खारिज में मुस्तकिल वजूद नहीं रखती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका खारिज के साथ कोई राबिता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। मसलन ये कलम जो अभी मेरे हाथ में मौजूद है, इसका वजूद मुस्तकिल है, और खारिज में अब इसके अलावा कोई माहियत का वजूद नहीं, लेकिन माहियत का इसी कलम से इंतजार करते हैं। ये कलम, अच्छा क्यों इंतजार करते हैं? ये कलम से जो हम इंतजार कर रहे हैं माहियत को, ये क्यों कर रहे हैं? सवाल यही है। तो इसके बारे में अर्ज करेंगे कि ये कलम वजूद महदूद है। ये कलम क्या है? वजूद महदूद है। ये कलम है, ये जो मेरे हाथ में ये कलम है, कंप्यूटर नहीं है। ये कलम है, किताब नहीं है। ये कलम है मसलन कुर्सी नहीं है, बुक नहीं है। ये कलम है मोबाइल नहीं है। ये कलम है किताब नहीं है। ये वजूद महदूद है। ये वजूद क्या है? महदूद है। हमारी जो अक्ल है इससे ये चीज मुंतजर करती है कि वाकईयत को तश्कील देते हैं कि ये एक वजूद है, लेकिन ये वजूद वजूद महदूद है। इसकी महदूदियत से एक मफहूम इंतजार करते हैं, जो मफहूम उसकी महदूदियत से इंतजार करते हैं उसे माहियत कहा जाता है। इस नुक्ते को लिया पता नहीं आपने? नहीं, यानी हम जो मफहूम इसकी महदूदियत से अख्ज कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसे माहियत कहा जाता है, वही माहियत का मफहूम है। इसीलिए ताबीर करते हैं माहियत हद वजूद है, माहियत हद वजूद है, और हर मौजूद की खारिज में क्या होती है? हद है। खूब, कलम की महदूदियत कलम के साथ है, लेकिन कलम की तरह किसी जुदागाना वाकियत को तश्कील नहीं देती कि आप कहें कि ये कलम का वजूद है, ये कलम की महदूदियत, ऐसे नहीं कह सकते आप। खारिज में ऐसा कुछ कुछ नहीं है, बल्कि महदूदियत वजूद महदूद के साए में मौजूद है। खारिज में जो चीज मौजूद है वो वजूद कलम है, लेकिन क्योंकि वजूद कलम महदूद है, उसके वजूद कलम के साए में माहियत मौजूद है। ये जो महदूदियत है, हद वजूद है, ये माहियत समझाती है हमें। दरवाके ये माहियत हद वजूद को समझाती है। बस वजूद खारिज में मौजूद बिज़ात है, और माहियत खारिज में मौजूद है बिल अरज, यानी वजूद होगा तो उसकी हद होगी, और उस हद का नाम माहियत है। आसान अल्फाज में बयान करें कि माहियत बयान कर रही है कि ये वजूद कैसा वजूद है। फारसी में कहें कि चिगुनगी, उसकी चिगुनगी, उसकी कैफियत को माहियत बयान करती है। ये किस तरह से होना और खारिज में इसके हिसाब से ये माहियत बयान करती है। बस माहियत भी खारिज में मौजूद है, लेकिन मुस्तकिलन नहीं है। अब ये कोई ना कहे कि मसलन माहियत का कि वाकियत नहीं है, वाकियत है लेकिन मुस्तकिल नहीं है, वजूद के परतों में है, वजूद के साए में है, वजूद होगा तो होगी, इसलिए तो कह रहे हैं वजूद असील है, माहियत एतबारी है। बस ये जो आप एतबार समझ रहे हैं, ये जो आप महदूदियत समझ रहे हैं, ये जो आप हद समझ रहे हैं, ये माहियत समझा रही है। और ये तब होगा जब वजूद होगा, वजूद ही नहीं होगा तो आप उसकी हद कैसे आप तसव्वुर करेंगे, कैसे जहन तअक्कुल करेगा। बस माहियत खारिज में मौजूद है लेकिन मुस्तकिलन नहीं है, वजूद के परतू और साए में मौजूद है। मसलन खारिज में नूर है और जुल्मत, जुल्मत क्या है, वो नूर का न होना, यानी जब रोशनी नहीं होगी तो अंधेरा होगा। और तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है साया, एक है नूर, दूसरा जुल्मत वही अंधेरा, और तीसरी चीज हमारे पास है साया। साया खुद कोई मुस्तकिल चीज नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, बहुत अमीक नुक्ते की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, यानी इन मिसालों से इंसान वजूद और माहियत को समझ सकता है। साया खुद, साया कोई मुस्तकिल चीज नहीं है, साया एक ऐसी चीज है जो इसी कलम के साथ है, इसी इंसान के साथ है। खूब, इसीलिए बुजुर्गान फरमाते हैं वजूद नूर है, अदम जुल्मत है और माहियत साया है। अगर ये वजूद नहीं होगा, अगर इंसान नहीं होगा जो चल रहा है, तो साया कहां से आएगा? बस माहियत तब आएगी जब वजूद होगा। ये माहियत दरवा के साये वजूद है, परथुए वजूद है। खुलासे कलाम, माहियत एतबारी है, यानी क्या, यानी मौजूद बिल अरज है, वजूद मौजूद है, यानी बिज़ात मुस्तकिलन मौजूद है। ऐसे नहीं कि वो किसी वजूद के साये में है, परतू में है, ना ना, वो मुस्तकिल मौजूद है, लेकिन माहियत मौजूद है, उसकी भी वाकियत है, लेकिन मतन खारिज में, मौतन खारिज को पुर नहीं कर रही माहियत, खारिज में किसी चीज को पुर करे ऐसे माहियत नहीं है, लेकिन वजूद मौतन खारिज को पुर करता है। जब पुर कर दिया, अब जो साया बनेगा इस वजूद का, उसको माहियत कहते हैं। लेकिन ये कोई ना कहे कि मसलन उसकी कोई वाकियत नहीं माहियत की, ना ना, ऐसे नहीं है, इसका राबता कवी है वजूद के साथ, इसकी माहियत की वाकियत भी है। यही वजह है कि आप इंसान से कभी भी गधे की माहियत इंतजार नहीं कर सकते। आप कहें कि मसलन किसी इंसान के बारे में कहें मा हुआ, तो आप उसको नहीं कहेंगे हुआ हिमारुन, क्योंकि आप उस इंसान से इंसान की माहियत तसव्वुर और ताकुल कर रहे हैं, इंतजार करते हैं। बस माहियत एतबारी है यानी इंतजाई है। माहियत को जब हम कहते हैं कि असालतुल वजूद व एतबारियतुल माहिय, इसका मतलब क्या है, यानी माहियत इंतजाई है, मुंतजे होती है वजूद से, असील वजूद है, वजूद होगा तो उसके साए और परतू में माहियत जहूर पैदा करेगी, उसका अपना कोई वजूद नहीं जो मौतन खारिज को पुर कर सके। बस इंतजाई आने एक और वजूद के साए में है। बस पूरा आलम बिज़ात वजूद से पुर है, माहियत को मौजूद महदूद से हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। ये बात, यानी अगर वजूद महदूद होगा तो माहियत भी होगी, क्योंकि उससे हम मुंतजर कर रहे हैं, उसकी हद है, दरवा के उस हद का नाम माहियत है, जो समझा रही है कि ये वजूद महदूद है। अब यहां तक आ गए, अब आपसे सवाल है, ये माहियत अगर उस मौजूद के लिए होती है जो महदूद है और उसके लिए हद है, तो क्या वो वजूद जो गैर महदूद है, ला महदूद है, ला मुतनाही है, उसकी माहियत होगी? नहीं, हरगिज़। क्यों? क्योंकि माहियत नाम ही हद वजूद का है, जिस वजूद की कोई हद ही ना हो, ला महदूद हो, ला मुतनाही हो, उसकी माहियत नहीं होगी, क्योंकि आपने फरमाया माहियत वजूद महदूद की को कहते हैं। बस वजूद महदूद, वजूद ला महदूद की माहियत नहीं होगी, क्यों? इसलिए क्योंकि वो लामहदूद है और माहियत हद वजूद का नाम है। बस आप खुदा के बारे में और हर वो चीज जो लामहदूद है उसके लिए आप क्या माहियत तसव्वुर नहीं कर सकते, उसके लिए ये नहीं कह सकते मा हुआ। क्यों? क्योंकि वो वजूद लामहदूद है और मा हुआ के जवाब में क्या आती है? माहियत आती है, और खुदा की माहियत नहीं है क्योंकि खुदा वजूद लामहदूद है, बाकी सारे वजूद महदूद हैं। बस हमने कहा कि वजूद महदूद जहन में माहियत की शिक्ल में जाहिर होता है, वजूद महदूद जहन में माहियत की शिक्ल में जाहिर होता है, और अगर वजूद लामहदूद हो तो माहियत नहीं होगी तो जहन में भी नहीं आएगा। बस खुदा जहन में नहीं आ सकता, उसको ताकुल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई हद नहीं है। बस खुदा वजूद लामहदूद है यानी उसकी माहियत भी नहीं होगी। अल्लदी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम, यानी अल्लदी ला युद्रिकुहु अल हिममुल बैदा, उसको कोई दर्क नहीं कर सकता, उसकी हकीकत को इदराक नहीं किया जा सकता क्योंकि वजूद लामहदूद है, वजूद लामुतनाही है। इसी वजह से, यही वजह है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अरफना का हक का मारिफतिक, जो तेरी मारिफत का हक है उसे नहीं पहचाना। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उसे पहचाना जा सकता था और रसूल खुदा ने नहीं पहचाना, ना ना ना, ऐसे नहीं है। वो इंसान कामिल जो उससे कोई भी अजीम रुतबे में अजीम नहीं है, वो फरमाता है मारफना का हक का मारिफतिक, जो तेरी मारिफत का हक है उसे नहीं हमने अदा किया, नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि अगर वजूद महदूद है तो ठीक है, उसको पहचाना जा सकता है, लेकिन लामहदूद की मारिफत हासिल करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर वजूद महदूद हो, वो महदूद कैसे लामहदूद को समझेगा? महदूद वजूद लामहदूद की मारिफत हासिल नहीं कर सकता, मगर इनके वो महदूद अपनी महदूदियत से गुजर जाए। आगा जान, बस नतीजा ये हुआ कि वजूद लामहदूद की माहियत नहीं होती। जब माहियत नहीं होती तो जहन में भी नहीं आता, जब जहन में नहीं आता तो उसको दर्क भी नहीं किया जा सकता, उसकी मारिफत हासिल करना भी खोप उस माना में मुमकिन नहीं है, क्योंकि महदूद लामहदूद को नहीं पहचान सकता। और अरफा भी यही फरमाते हैं कि मुमकिनात, और खुदा के लिए यही फरमाते हैं कि बिज़ात फकत खुदा मौजूद है, और मुमकिनात का हाल और सहम और हिस्सा वही है जो आप माहियत को दे रहे हैं। यानी क्या? यानी अगर ये कि माहियत झूठ नहीं है, लेकिन इस माहियत ने मौतने खारजी को पुर नहीं किया हुआ, इसी वजूद के साए में पलती है, इसी वजूद का जिल माहियत है, साया माहियत है। और अब आप यही कहते हैं कि खारिज में वजूद बिज़ात फकत खुदा है, मुमकिन उसी वजूद का परतू है, उसी वजूद का साया है, उसी वजूद के कमालात का परतू है, उसी वजूद का ख्याल है। यह है उरफा का बयान। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह चार बराहीन पेश करते हैं, तवज्जो करें। ये तो हमारा मुद्दा था कि वजूद असील है, माहियत एतबारी है, वजूद खारिज में वजूद ही है। ये माहियत तब आएगी जब वजूद होगा, ये माहियत हद्दे वजूद है दरवाके। अच्छा, अगर तबा तबाई ने रहमतुल्लाह अलैह ने इसके लिए चार बुरहान पेश किए हैं कि वजूद असील है, माहियत एतबारी है। अच्छा, दलील आगा। दलील अव्वल, हमारे पास जहन में तीन चीजें हैं, वजूद, माहियत, अदम। ये गुज़श्ता जलसे में भी हमने बयान किया था, तवज्जो करें फकत। वजूद, माहियत और अदम। माहियत याने इंसान, माहियत याने हिमार, माहियत याने कलम, याने जो मा हो के जवाब में वाक्य हो उसे माहियत कहा जाता है। यही बयान किया था। आगा अंसारी शिराजी फरमाते हैं, बूदस्तो नबूदस्तो नमूद। नबूद यानी वही साया, यानी या वजूद, वजूद यानी नूर, अदम यानी जुल्मत, माहियत यानी साया। अच्छा, एक नुक्ता बस ज़हन में, टोटल तीन चीजें हैं, वजूद, जुल्मत और क्या, दरवाके साया। बूदो नबूदो नमूद, बूदस्तो नबूदस्तो नमूद। अच्छा, अगर इसी वजूद का मिजाज ये है कि ये जातन अदम को तर्द करता है, दूर फेंकता है, कबूल नहीं करता, वजूद अदम को तर्द करता है, दूर फेंकता है, कबूल नहीं करता। वजूद और अदम क्या है, नतीजैन है। अदम भी इसी तरीके से, अदम भी जातन वजूद को तर्द करता है, तर्द करता यानी दूर फेंकता है, वजूद को कबूल नहीं करता। इनके आपस में नहीं बनती, जहां वजूद होगा वहां अदम नहीं होगा, जहां अदम होगा वहां वजूद नहीं होगा, अदम क्या होगा, ये भी एक समझाने के लिए है। ये वजूद का मिजाज है। माहियत का मिजाज क्या है? अगर माहियत का मिजाज यह है कि उसकी वजूद और अदम की तरफ निस्बत बराबर है, सविया है, न वजूद है वहां उधर न माहियत है, बराबर है। जिसकी भी इल्लत आएगी उसकी तरफ मैलान पैदा करेगी। जातन न वजूद को कबूल करती है, न जातन अदम को कबूल करती है। अच्छा, कल हमने मिसाल दी थी जब हमने अन्नल वजूद ज़ाइदुन अलल माही आरजुन लहा की गुफ्तगू कर रहे थे, तराजू की, मीजान की। ये मीजान आपने तराजू जो देखा है, ये तराजू आप देखें, एक तरफ कोई चीज रखते हैं, कोई मसलन सब्जी, सेब या अनार। अब अनार मसलन, एक अनार इधर से रख दिया और उधर क्या है, असलन मसलन 1 किलो का अगर कोई पैमाना वहां पर मौजूद है, कोई लोहे की जो एक चीज है, जो मसलन जो 1 किलो पर महदूद है। अच्छा, दूसरी साइड आपने वो 1 किलो का पत्थर रखा, एक साइड आपने एक अनार रखा। अगर अनार 1 किलो से कम होगा तो पत्थर नीचे और अनार ऊपर चला जाएगा। ये अब आप तवज्जो करें, इसमें ना अनार हो ना मसलन कोई चीज हो, ये ऐसा पैमाना है जो दोनों पलड़े इसके बराबर हैं। एक पलड़े में जो चीज पड़ेगी उसी की तरफ मैलान करेगा, उसी की तरफ जाएगा। खूब ऐसे नहीं है कि कोई चीज इस पलड़े में पड़े भी सही और उसी की तरफ मैलान न करे, ये नहीं हो सकता। बस माहियत भी ऐसे, माहियत न वजूद को पसंद करती है न अदम को, बराबर है दोनों की तरफ निस्बत, लेकिन जिसकी इल्लत आ जाए उसकी तरफ मैलान पैदा करती है। अगर वजूद की इल्लत आ जाए तो वजूद, अगर अदम की इल्लत आ जाए तो अदम को कबूल करती है। अब सवाल करते हैं उन लोगों से जो मसलन कहते हैं कि, क्योंकि नजरिया एक कुछ अफराद का यह है कि माहियत असील है, वजूद असील नहीं है, कि ये इल्लत क्या करती है? ये जो कह रहे हैं कि इल्लत जब तक आए ना आए तब तक इनमें निस्बत सविया होती है, ये इल्लत करती क्या है कि माहियत मौजूद हो जाती है और उसके बाद ये मनशे आसार वजूद माहियत जाहिर होते हैं? खूब, क्योंकि माहियत तो वजूद और अदम की तरफ बराबर थी, तो आपने कहा इल्लत आएगी तो एक वजूद एक तरफ क्या होगा, मैलान पैदा होगा, वो चीज आ जाएगी। अगर वजूद की इल्लत तो वजूद, अगर अदम की इल्लत तो अदम। तो ये वजूद जो आप कह रहे हैं इल्लत, ये इल्लत, ये इल्लत करती क्या है? खूब, क्योंकि आपने कहा वजूद और अदम की क्या है, निस्बत बराबर है। अच्छा, अब जो कह रहे हैं कि इल्लत आएगी, इल्लत आने के बाद आया माहियत में तब्दील आएगी या नहीं? हो, अगर कोई कहे कि मसलन इल्लत आ जाए, इसी तराजू में अगर आप कोई मसलन 1 किलो सेब रख दे और फिर भी दोनों पल्ले मसलन क्या हो, बराबर हो, ऐसे भी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। हो, अगर कहें कि मसलन इल्लत आने के बाद माहियत में तब्दीली आती या नहीं, अगर कहें कि ये वैसे की वैसी है तो ये इनकलाब है। इनकलाब है या नहीं है? इनकलाब है। यानी एक चीज जिसमें किसी चीज का इजाफा भी नहीं हुआ और वो चीज इनकलाब, मसलन सिस्टम सारा हो जाए, वो इनकलाब फलसफी। पहले इनकलाब को समझें ताकि ये बुरान कायम करें, थोड़ा खलत हो रहा है यहां पर। फलसफी इनकलाब ये है कि एक चीज किसी चीज में कोई इजाफा हो न कमी हो फिर भी तब्दील हो जाए। यानी एक चीज में किसी चीज का भी न कोई इजाफा हो न कमी हो फिर भी तब्दील हो जाए। यानी मसलन तराजू है, उसमें न कुछ न इधर रखा है न उधर रखा है, फिर भी तब्दील हो जाए। मसलन मसलन मिसाल की बात कर रहा हूं। मसलन ये कलम है, अब ये कलम आपके सामने है इसलिए इसको मिसाल, ये कलम है, इसमें न कोई चीज इजाफा की है न कम की है, फिर भी ये कलम तब्दील हो जाए, ये अकलन महाल है। यानी इनकलाब लाजिम, मसलन ये इनकलाब की मिसाल दी आपको मैंने, बस इल्लत के आने के बाद न माहियत में कोई चीज इजाफा हो रही है न कम हो रही है, फिर भी माहियत तब्दील हो रही है, ये इनकलाब है। और इनकलाब क्या है? महाल है। या आप कहें कि इल्लत के आने के बाद माहियत में इजाफा हुआ है, इल्लत के आने के बाद माहियत में इजाफा हुआ है, पहले माहियत वजूद नहीं रखती थी अब माहियत मौजूद है, वजूद का इजाफा हुआ है। तो दरवाके फिर कौन सी चीज जिसका इजाफा हुआ? वजूद का इजाफा हुआ, माहियत का तो नहीं हुआ। तो असील कौन सी चीज बनी? वजूद बनी। असालत वजूद फिर भी साबित हो जाएगा ना कि माहियत। हो, ये चीज वाजे है, इस पे दिक्कत करें कि क्या होता है। अल फसल राबियो फी असालत वजूद व एतबारियत माहिया। फसल राबे वजूद के असील होने और माहियत के एतबार होने के बारे में है। अच्छा, इन्नहु ला नरता फी अन्न हुनाक उमूरन, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ उमूर वाकई हैं, जात आसार इन वाकई है, जिनके वाकई असर भी हैं। लैसत बेवहमिल वाहिम, ये उमूर वाकई किसी वाहिम ने, वहम करने वाले ने वहम नहीं किए, वाकई खारिज में वाकई उनका वजूद है। मिन हाजिल उमूर المشهودة لنا في عين انه واحد في الخارج مفهومين اثنين। फिर हम ये जो उमूर जिनको हम मुशाहिदा कर रहे हैं, ये खारिज में जो मौजूद हैं, इनसे हम दो मफहूम मुंतजर करते हैं। जो भी खारिज में चीज मौजूद है इनसे हम दो मफहूम मुंतजर करते हैं, जैसे हमने बयान किया। कुल्लु मिन्हुमा गैर अल आखिर मफहूमन वैन इत्तहदा मिस्ताकन, उनमें से हर एक दूसरे मफहूम का गैर है अगरचे मिस्ताक में एक ही है। वहुम अल वजूद वल माहिया, एक वजूद मुश्तरक जिसका वजूद नाम रखा था, एक वजूद एक मफहूम मुख्तस जिसका नाम माहियत रखा था। कल इंसान अल्लज़ी फिल खारिज अलमुंतज़िर अनहु अन्नहु इंसान व अन्नहु मौजूदुन, जैसे इंसान जो खारिज में मौजूद है, इससे हम दो मफहूम मुंतज़िर कर रहे हैं, अन्नहु इंसानुन एक ये मफहूम इंतज़ा किया, व अन्नहु मौजूदुन कि ये मौजूद है, दो मफहूम मुंतज़िर कर रहे हैं। वक़द इख्तलफ अल हुकमाउ फिल असील मिनहुमा, हुकमा का इख्तलाफ हुआ है कि इन दोनों में से असल कौन सा है, आया वजूद है या माहियत है। फजहब अल मशाऊना इला असालत अल वजूद, मशाई इस नजरिए की तरफ गए हैं कि वजूद असील है। व नुसिब इला इशराकीन अल कौलु बि असालत अल माहिया, इशराकियों की तरफ नजरिया एक मनसूब किया गया है, वो कौन सा के असालत माहियत है, माहियत असील है ना वजूद। व अमल कौलो बे असालत हिमामन फलम यजहब इलैहि अहद मिनहुम, और वजूद और माहियत दोनों असीलों इकट्ठे खूब, ये इन दोनों में से कोई भी नहीं गया। ले इस्तिल्ज़ाम ज़ालिक कौन कुल्लु शैइन शैइन इस्नैन वह खिलाफ़ ज़रूरत, अगर दोनों असील होंगे तो क्या लाजिम आएगा कि हर शय दो चीज़ें हों, एक चीज़ हो लेकिन दो चीज़ें हों, ये खिलाफ़ ज़रूरत है, एक एक बदही मसला है। अच्छा, वल्हक़ मा ज़हब इलैहिल मशाऊन मिन असालतिल वजूद, आगा तबा तबाई के नज़दीक हक और सही नज़रिया कौन सा है, वो मशाउन वाला नजरिया, मशाई जो कहते हैं कि वजूद असील है, माहियत एतबारी है। आगा आपके पास दलील, ये जल्दी जल्दी में एक दलील पढ़ें इंशाल्लाह, फिर जो तीन दूसरे बुरहान हैं इंशाल्लाह कल अगर फुर्सत हुई तो। वल बुरहान वाला है अन्नल माहियत मिन है सुहिया लैसत इल्लाहिया, माहियत जैसे हमने बयान किया न वजूद की तरफ इसका मैलान है न अदम की तरफ मैलान है, मिन है सुहिया इल्ला ही है, ये वही है बराबर है, इलल वजूद वाल अदम मुतसाविया तो निस्बत इलल वजूद वाल अदम, एक तराजू के मानंद है जो जिसका जिसकी निस्बत वजूद और अदम की तरफ बराबर है। फलो लम यकुन खुरूजहा मिन हद्दिल इस्तिवा इला मुस्तविल वजूद बेवासितिल वजूद कान ज़ालिक मिनहा इनकलाबन। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर इस माहियत का खुरूज इसी इस्तवा इस बराबरी से मुस्तवा वजूद के तरफ वास्ते वजूद से न हो तो कान ज़ालिक मिन्हा इनकलाबन, क्या लाजिम आएगा, इनकलाब लाजिम आएगा। वह महाल उन बेजर वो महाल है, फल वजूद हुवल मुखरिजु लहा लहा अन हद्दिल इस्तवा, बस वजूद ही है जो इसको इस बराबरी से बाहर निकालता है, फहुअल असीलो, बस असील कौन हुआ, वजूद हुआ, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने जो कहा था कि वो इल्लत जो इसको वजूद या अदम की तरफ मैलान देती, अगर इल्लत वजूद की है तो वो चीज मौजूद हो जाती है, खूब, अगर वो चीज जो इसको इस्तवा से मुस्तवा वजूद की तरफ यानी इस तसावी से बाहर निकाल रही है, खूब, अगर खारिज न हो तो इनकलाब लाजिम आएगा, यानी आप कोई चीज तराजू में रखें और मसलन और कोई चीज उसमें उसमें कोई तब्दीली ना आए, इनके नामी से फलो लम यकुन खुरूज हा मिन हद्दिल इस्तवा, अगर खुरूज इसका निकलना हद्द इस्तवा से इला मुस्तविल वजूद वजूद की सतह की तरफ वजूद की तरफ बेवास्तल वजूद वजूद के जरिए न हो कान ज़ालिक मिन्हा इनकलाबन, जो इनकलाब है और ये महाल है। फल वजूद हुवल मुखरिजु लहा अन हद्दिल इस्तवा, बस ये वजूद ही है जो इसको हद्द इस्तवा से क्या कर रहा है, खारिज कर रहा है, तवज्जो है ना, मैं एक दफा और बयान कर दूं, देखें आगा ये पलड़ा है तराजू है, इस तराजू में आपने कहा कोई इल्लत आएगी जो इस माहियत को अपनी तरफ खींच के जाएगी, अगर वजूद की इल्लत होगी तो वजूद की तरफ, अगर अदम की इल्लत होगी तो अदम की तरफ, अगर वजूद की इल्लत आए और फिर भी इसमें कोई तब्दीली ना आए, ये भी महाल है हो, और कोई तब्दीली ना आए फिर भी ये तब्दील हो जाए, ये भी महाल है। तो जो है नहीं, यानी कोई तब्दीली ना आए, कोई चीज, किसी चीज का भी आप इस माहियत में इजाफा न करें, किसी चीज का भी इजाफा न करें, तब्दील हो जाए, ये मुमकिन है? कह रहे महाल है। तो फिर वो जो चीज इजाफा हुई है वो कौन सी है? वो वजूद है। तो किसने इसको हद इस्तवा और तसावी से निकाल कर बाहर निकाला, वजूद की तरफ लेके आया, वो कौन सी चीज है जो तसावी से इसका पलड़ा एक तरफ मैलान पैदा करता है, एक तरफ होता है? वो वजूद ही है। तो वजूद आया तो इसने अपना रंग तब्दील किया, इसकी माहियत आई, इसकी बिलाकर ये वाकईयत इसकी पैदा हुई, वरना ये न वजूद था न अदम था, ये सविया थी, बराबर थी। तो जिस चीज की वजह से इस वाकईयत का, इस हद का नाम पड़ा है, वो कौन सी चीज है? वो वजूद है। बस वजूद की वजह से माहियत बन रही है। तो असील कौन सी बनी बनी चीज? वही वजूद है। माहियत एतबारी है, क्यों? अगर कोई और चीज होती तो बयान करते, क्योंकि आपने कहा कि बगैर इल्लत के इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, और बगैर इल्लत के अगर कोई चीज तब्दीली इसमें आ जाए, कोई चीज, किसी चीज का भी इजाफा ना हो और तब्दीली आ जाए, तो ये खिलाफ वाक है, ये इनकलाब है, ये इनकलाब है। इनकलाब ये है कि यानी आपने किसी चीज का इजाफा नहीं किया फिर भी तब्दील हो गई, खूब, ये महाल है, ये असलन अकलन महाल है। तो बस जो चीज, जिस चीज से इसकी इसमें तब्दीली आई है, वो कौन सी चीज है? वो वजूद है। तो इसमें पहले तब्दील नहीं आ रही थी, वजूद की वजह से तब्दीली आई है। बस वजूद असील है, इसीलिए इसमें तब्दीली आई, क्योंकि इसमें, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसका तो कोई वजूद नहीं था, वजूद की वजह से इसने अपना तशख्खुस जाहिर किया है। तो असल कौन सी चीज बनी? वही वजूद। अगर वजूद ना होता, साया ना होता, ये साया तब आया जब वजूद आया, तब तक ये साया असलन नहीं आता जब तक वजूद नहीं आता। तो असल कौन सी चीज बनेगी? वजूद बनेगा ना साया, क्योंकि साया तब तक नहीं आता जब तक वजूद नहीं आता। तो असल कौन सी चीज बनेगी? वजूद। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।